Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अंतकरण में जब बिंबरूप कुटस्थ का पहली बार प्रतिबिंब पड़ा था, उस समय ये गलती ना किया होता कि मेरा स्वरूप तो कुटस्थ ही है, यही दृष्टि रखकर ये जो अंतकरण में प्रतीत हो रहा है ये तो प्रातिभासिक है, अंतकरण के चलते है, मेरा असली स्वरूप तो वही है, ये निश्चय बरकरार रखते तो पुनर्जन्म न होता, फिर संसार यात्रा न होती। लेकिन जो उपाधि है उसी को ही तुमने अपना स्वरूप मान लिया, हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब कब मानी? शुभ मुहूर्त में माना था कि अशुभ मुहूर्त में माना था? बोलो। शायद मुझे लगता अशुभ ही था वो दिन है? जिस दिन भी ये गलती कर ली है वो शुभ होता, मंगलमय होता तो जीवन विषाद से ग्रसित न होता, है ना, बड़ा आनंदमय होता, विषाद से ग्रसित न होता। इसका मतलब अशुभ ही मुहूर्त था, अब वही गलती आज तक भोग रहे हैं, क्योंकि हर बार पैदा हो रहे हैं फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, उसी एक दिन की गलती से, एक बार की गलती से ये गलती पुनर्जन्म पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर का कारण बनता जा रहा है। न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है हमको, न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है। अभी तक तो जो भोग चुके हैं, आज जो भोग रहे हैं भोग ही रहे हैं, और आगे भी न जाने कब तक भोगना है। अब यदि कोई पूछे कि महाराज इसके मुक्ति पाया जा सकता है, इससे अलग होया जा सकता है, बोले हुआ जा सकता है। कब कैसे? तो वेदांत ने तो एक ही उत्तर दिया कि तुम वेदांत के विचार के माध्यम से सतत अपने बिंब रूप कुटस्थ साक्षी को मेरा स्वरूप है करने का निश्चय कर लो, फिर आगे तुम्हारी ये यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, उस गलती को फिर सुधारो। ये देख लो, उस गलती को न जाने कब तुमने की थी, वो गलती को कुटस्थ साक्षी को अपना स्वरूप न मानकर प्रतिबिंबित चेतना को तुमने अपना स्वरूप माना, वो जो गलती उसको फिर आज सुधारो, आज सुधारने का मौका है, सुधार लो, इसी जन्म में सुधार लो, अभी सुधार लो। यदि वो तुम सुधार लोगे कि मेरा असली स्वरूप तो कुटस्थ साक्षी है, फिर आगे तुम्हारी यात्रा चलेगी ही नहीं, फिर संसार तुम्हारे लिए विषाद होगा ही नहीं, और नहीं करोगे तो फिर आगे चलता ही रहेगा। एक उपाय तो यह। और तुम कहो नहीं महाराज वो तो थोड़ा कठिन है, अपने आप को कुटस्थ साक्षी निश्चय करना तो बड़ा कठिन पड़ रहा है। तो कठिन पड़ रहा है तो दूसरा सरल उपाय बता रहे हैं शंकराचार्य जी, कुछ नहीं, भगवान शिव के चरण पकड़े रखो, बस सब काम हो जाएगा, आगे वही कर लेंगे वो है? आगे फिर आगे वो कर लेंगे, उनका चरण पकड़ लो। तो ये श्लोक पर विचार करते हैं, ये उन तमाम शास्त्रीय पंडितों के प्रति जो केवल शास्त्र की दुहाई देते हैं और शास्त्रों के युक्ति, शास्त्रों के दुहाई, शास्त्रों का प्रमाण के द्वारा तर्क वितर्क वहा पोह करते रहते हैं, उन शास्त्रीय पंडितों के प्रति ये कटाक्ष है, शंकराचार्य ये कटाक्ष कर रहे हैं। क्या करते हैं विद्वान लोग? घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। अब तुम लोग ने तो न्याय शास्त्र न पढ़ी हो, पढ़ा नहीं है हमारा न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन है, हाँ, वैशेषिक और न्याय, नब्बे न्याय, प्राचीन न्याय, वैशेषिक, कणाद का न्यायशास्त्र, गौतम का न्यायशास्त्र, कणाद ऋषि का, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र। बोलो क्या कहते हैं? घट माने एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा। वो घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण क्या है? तुमने बड़े आराम से उत्तर दे दिया, मिट्टी है। एक घड़े की उत्पत्ति के लिए कितनी मिट्टी है? मिट्टी क्या सारा संसार की मिट्टी उस घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण है? है? संसार में जितनी मिट्टी है सब मिट्टी मिलकर एक घड़ा उत्पन्न हुआ है क्या? तब तो मिट्टी उपादान कारण है। नहीं तो उस घड़े के उत्पत्ति के लिए जितनी मिट्टी चाहिए वह मृत पिंड ही उस घड़े के उपादान का कारण है। ले जी, सारी मिट्टी नहीं, क्योंकि अलग अलग घड़े के लिए अलग अलग पिंड बनाना पड़ेगा कि नहीं है? कुमार क्या करता है? मिट्टी का किसी एक अंश लेके आता है, उसको कूट काट करके पानी आदि डाल के एक पिंड बनाता है, उस पिंड को चक्र में डालता है, चक्र के बाद उसको पिंड को शेप देता है, घड़े का आकार देता है। वो जो आकार लिया हुआ, जो तैयार हुआ हुआ घड़ा है, उस घड़े का उपादान क्या, कारण क्या है? मिट्टी है कि मृत पिंड है? किसी ने कहा मिट्टी है, उन्होंने कहा नहीं नहीं मृत पिंड है। ले जी, प्रत्यक्ष तो यही देख रहा है ना। उपादान का मतलब क्या है? वो कारण को उपादान कारण कहते हैं जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में ही रहे, अन्यत्र न रहे, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, उपादान कारण। अब एक घड़ा उत्पन्न होना है, घड़ा कार्य है, मिट्टी को अर्थात मृत पिंड को घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी रहना पड़ेगा कि नहीं है? अच्छा, जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय भी रहना पड़ेगा कि नहीं? अब घड़ा बन जाने के बाद भी मृत पिंड को रहना चाहिए, लेकिन क्या घट बनने के बाद मृत पिंड रहता है? बोलो है? ये अब कुछ लोगों ने क्या कहा, घट उत्पत्ति का कारण क्या है? मृत पिंड उपादान कारण नहीं है, मृत पिंड ध्वंस घट उत्पत्ति का उपादान कारण है। ले जी, अब हो गया काम, सही क्या लग रहा है तुमको? मिट्टी उपादान कारण कहने वाला जो पक्ष है वो सही है क्या? उसका खंडन कर दिया, मिट्टी उपादान कारण है तो सभी मिट्टी चाहिए एक घड़े के लिए। क्या सभी मिट्टी मिलकर एक घड़ा बना है? नहीं। फिर उस मिट्टी के लिए, उस घड़े के लिए जितना मिट्टी चाहिए उतना मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी लाकर एक तरफ रख दो तो घड़ा बनेगा? तो फिर क्या करना पड़ेगा? मृत पिंड बनाना पड़ेगा। तब फिर क्या सिद्ध हुआ? मृत पिंड घट का उपादान कारण है। तो तीसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है? उपादान कारण का एक नियम होता है, उसको हम उपादान कारण मान सकते हैं, जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में रहे, स्वरूप से रहे। ये देख लो, तब मृत पिंड को तुमने जो उपादान कारण माना है वो गलत हो गया, क्योंकि मृत पिंड कार्य उत्पत्ति से पहले तो रहेगा, कार्य उत्पत्ति क्षण में रहेगा, लेकिन कार्य उत्पत्ति के बाद मृत पिंड ही खत्म, मृत पिंड नष्ट नहीं हुआ, और मृत पिंड कार्य उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हुए घड़े में मिट्टी का पिंड रहेगा क्या? इसलिए मृत पिंड उपादान कारण नहीं घड़े का। फिर क्या कारण है? मिट्टी तो फिर कितनी मिट्टी, सारा मिट्टी, ये प्रश्न फिर जीव करती हूं। तो तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा, मृत पिंड ध्वंस, ये देख लो ये शब्द जाल है कि नहीं बोलो, मृत पिंड का स्वरूप ध्वंस नाश होना ही घट उत्पत्ति में कारण है। बात समझ में आई कि नहीं? अब स्पष्ट हो गया? अब आम रस तुम आम से बनाते हो कि आम के ध्वंस से बनाते हो? अब समझ में आ गई है? आम रस, आम रहते हुए आम रस बनेगा कि आम के ध्वंस से आम रस बनेगा? बोलो, अब तो समझ में आ गई बात है? इसी तरह मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना, अब कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना। तो ये सारी बात कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि ध्वंस किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता है। फिर क्या होगा कारण? बोले परमाणु, पार्थिव परमाणु ही घट उत्पत्ति में कारण है, ये मान लेना चाहिए। ये सारा विवाद यहां है, दुनिया यही विवाद में पड़े रहते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं है? ऐसे ही उहा पोह शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग न्याय पढ़ते थे ना, कुछ न्यायिक लोग हाँ कहीं गए, तर्कशास्त्री लोग, एक भाषा शास्त्री, दूसरा तर्क शास्त्री और तीसरा ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिषी, ये सब थे। कहीं गए, भूख लगी, भूख लगी तो अब खाना तो पड़ेगा ना। तो किसी गांव में पहुंचे, भाई हमको भूख लग रही है, खाना दो, हम बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो गांव में किसी ने कह दिया कि भाई हम आपको राशन देते, पकाओ खाओ, ले जाओ राशन। बेचारे राशन लेके चले गए, तो अग्नि खोजने के लिए जंगल में गए। तो वो जो एक वैद्य था, कविराज भी था वहां, एक वैद्य था, जंगल में लकड़ी खोजने गया। जो लकड़ी खोज रहा है वो कहता है ये कौन सी जात की लकड़ी है, ये कौन से पेड़ का है, इस लकड़ी का किस रोग में निदान होगा, कौन से औषधि बन सकता है, किस रोग के लिए काम आएगा, क्योंकि वो तो वनस्पति विज्ञान जानता था। लकड़ी लेने से पहले हजार बार सोचता था नहीं नहीं ये तो मधुमेह के लिए काम आएगा, इसको जलाना नहीं चाहिए, छोड़ देता था। फिर दूसरा कहेगा ये लकड़ी, ये लकड़ी किस जाति का है, फलाने जाति का है, हाँ ये किस में काम आता है, कौन से वनस्पति रसायन गुण है इसमें, क्योंकि वही जीवन भर वही स्टडी किया हुआ था। अरे ये तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा काम आने वाला, इसको जलाना ठीक नहीं है, उसको छोड़ दिया। ले जी, करते करते जंगल में घंटों हो गया, लकड़ी खोज ही नहीं पा रहा है वो, समझे कि नहीं? अब उधर वो एक व्यक्ति, पाक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, चावल लेकर बैठा है, है? अब आएगा लकड़ी लेकर, अब आएगा लकड़ी लेकर, पकाएंगे खाएंगे, वो आए आने का नाम नहीं लेता। उधर दूसरा जो था तर्कशास्त्री, उसको बाजार में नून तेल खरीदने के लिए भेजा था, किसी दुकान में गया, नमक दे दो, नमक दे दिया। तो बोले तेल दे दो, बोले तेल दे दो, बर्तन लाए हो? बोले हां एक शीशी लाया है, कटोरी लाया है। उसने तेल दे दी, उसमें तेल लेकर आया, देखने के बाद तेल क्या घी समझ लो ना, उस जमाने में तेल कहां मिलता था, घी ही मिलता था, तो आजकल तो तेल भी शुद्ध नहीं मिलता है, उस समय तो प्योर घी मिलता था। घी लेकर आया कटोरी में, आते आते वो तो तर्कशास्त्री था, उसने तर्क करने लगा, ये घृताधारे पात्रम, पात्राधारे घृतम, ये घी का आधार कटोरी है कि कटोरी का आधार घी है, उसके दिमाग में तर्क आ गया। उसके दिमाग में क्या आ गया, घी कटोरी में टिका हुआ है कि कटोरी घी में टिका है? घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम। अरे तुम्हारे हाथ में घी भी है कटोरी है, प्रयोग कर लो ना, किसके आधार में कौन चीज है? बोले देखते प्रयोग करते तो उल्टा लिया उसने। जब उल्टा दिया तो सारा घी खत्म, लेकिन उसको घी माने नष्ट होने का दुख नहीं हुआ, बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। खुश होता हुआ आया, देख लो आज एक समाधान मिल गया हमको। कभी कभी मोहन इस प्रश्न करता है, उसका सही समाधान मिलता है तो इतना खुश होता है, वो बहुत खुश होता है, महाराज वाह क्या आज संतोष हो गया मुझे, कई दिन से ये प्रश्न मुझे हैरान कर रहा था, आपकी कृपा से आज ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, बड़ा प्रसन्न होता है। उसको समय इतना नष्ट हो गया उसका दुख नहीं होता है। दिमाग इतना खाली हो गया उसका भी उसको दुख नहीं है, उत्तर मिल गया वो प्रसन्न। इसी तरह वो नैयायिक को घी खत्म हो गया उसका दुख नहीं है, क्या हुआ? बड़ा खुश नाचते हुए आया, अरे क्यों प्रसन्न, घी कहां गया? बोले अरे घी के बात छोड़ो, पूछो नहीं, आज तो ऐसा मुझे समाधान मिला, उत्तर मिला। मतलब क्या हुआ, घी लेकर आ रहा था, हमारे दिमाग में तर्क आ गए कि घी के आधार में कटोरी टिका है कि कटोरी के आधार में घी, घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम, दिमाग में वो प्रश्न ने परेशान कर लिया। हमने कहा प्रयोग कर लो, तो मैंने ऐसा किया तो पता चल गया कि क्या हुआ, पात्राधारे घृतम, घी पात्र में टिका हुआ था, यह समाधान हमको मिल गया। अब विकल्प नहीं आएगा कि घी कटोरी में है कि कटोरी घी में है, समाधान हो गया घी कटोरी में है। हाँ फिर घी कहां है? बोले घी जाने दो ना, हमको समाधान मिल गया वो खुशी है भाई, समझे कि नहीं? ये शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ना घी आया ना लकड़ी आया, बोलो लकड़ी भी ला नहीं पाया, सब वनस्पति है, उसको जलाकर नष्ट तो नहीं करना चाहिए ना भाई, है रामदेव जी के बाल, क्या बाल, बाल कृष्ण जी की जैसे वही होंगे बेचारे, गए होंगे लकड़ी लेने, सब रसायन वनस्पतिज्ञ है ना, वो तो बड़े भारी वनस्पतिज्ञ है, कुछ लकड़ी ला ही नहीं पाया, वो खाली रो रहा, वो घी लेने गया था वो भी नहीं ला पाया। लकड़ी क्यों नहीं लाए? बोले अरे पूछो नहीं, ये जंगल तो बहुत बढ़िया है, यहां एक फैक्ट्री खोलना चाहिए आयुर्वेद का, यहां तो जो भी लकड़ी मिल रहा है, घास मिल रहा है, सब रसायन है, सब आयुर्वेदिक औषधि मूलक है। क्या मैं अब ऐसे बेशकीमती रसायन को, जड़ी बूटियों को आग लगाकर राख बनाए? ना वो लकड़ी ला पाए ना वो घी ला पाए, समझे कि नहीं? यही तो होता है ना, दार्शनिक लोग सब इसी में समय बर्बाद कर देते हैं, बस उपलब्धि कुछ नहीं। अब भूख लगाया और क्या करोगे? तब वेदांती था, उसने कहा अरे भाई भूख कहां लगी है? वेदांती था ना, वो अपना प्रयोग करने लग गया। उसने कहा भूख शरीर को लगती है कि भूख मन को लगता है, कि भूख इंद्रियों को लगता है, कि भूख प्राण को लगता है, कि हाँ। बहुत विचार किया, करते करते अंत में उसने निश्चय कर दिया, अरे तुम लोग चिंता नहीं करो, भूख तो प्राण को लगती है, तुम प्राण है ही नहीं हो, खाना किस काम का, चिंता नहीं करो, उसको लगती हो तो लग, नहीं तो प्राण को, तुम असंग हो जाओ ना। उसने भी समस्या वहां भी उसने समाधान दे दी, ले जी हे भगवान बड़ा विचित्र अवस्था है। तीसरा ज्योतिष था तो उसने कहा चिंता न करो, इस समय हमारे लिए मुहूर्त प्रतिकूल है, जब सब मुहूर्त अनुकूल होगा, योग नहीं है बात करने का, भोजन करने का, जिस दिन मैं देख रहा हूं पंचांग देख रहा हूं, देखो ये ग्रह इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए घी गिर गया, ये ग्रह इसमें आने के कारण इसीलिए इस ग्रह के चलते लकड़ी नहीं मिल रही है, चिंता नहीं करो, ये ग्रह इसमें आएगा तो तो घी भी मिल जाएगा, ये ग्रह इसमें आएगा तो लकड़ी भी मिल जाएगा। अरे कब आएगा, कब आएगा वो? लेव जी, उसने भी अपना समाधान दे दिया, बैठो भूखे। क्या उड़ा दिया है, समझे कि नहीं? शंकराचार्य जी यही कटाक्ष कर रहे हैं। घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। नैयायिक लोग और कहते हैं अग्नि चाहिए था, अग्नि चाहिए था तो आग लेने के लिए गया था। एक और कोई आग कहां मिलेगा, तो विचार करने लगा। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी, साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होता है, हैं? साहचर्य नियम है, ये व्याप्ति है। कहां धुआं है, कहां धुआं है, चारों तरफ धुआं देखते धुआं को खोजता हुआ चलने लगा। उसके पड़ोस में एक घर था, वहां भोजन पक रहा था, वहां नहीं जा रहा है अग्नि मांगने के लिए, हैं? वो तो धुआं खोजता हुआ घूम रहा है। अंत में दिखाई पड़ा एक पहाड़ के चोटी में कोई किसान, हैं? कोई पशु चराने वाला कोई किसान होगा, चरवाहा, वहां चराते हुए पहुंचा तो उसने अपने भोजन पकाने के लिए आग जलाई होगी, वहां धुआं दिखाई पड़ा उसको, हाँ, तो व्याप्ति स्मृति हो गई उसको, वो देखो वहां धुआं है, इसका मतलब अग्नि जरूर है। पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, साहचर्य नियमो व्याप्ति यथा महानसम। क्या उसने प्रयोग कर दी, तो अब वो पहाड़ चढ़ाई करने लगा, किसके लिए? अग्नि के लिए। अब कब लाएगा, कब भात पकेगा? उसने घी गिरा दी, उसने लकड़ी नहीं लाई, है? वो ज्योतिष पंचांग खोलकर बैठा है, मुहूर्त नहीं आ रहा है उसके सामने। वो अग्नि लेने गया तो पहाड़ की चोटी में गया, 5 घंटा चढ़ाई कर रहा है, क्यों? बोले अग्नि वहां है। कैसे कहा? बोले धुआं निकला। अरे मूर्ख, क्या मजाक है भाई, हे भगवान। घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। पटो वा तंतुर्वा, देखो वेदांती क्या कहते हैं, तंतु परस्पर, तंतु संयोग पटा, ये पट क्या है, वस्त्र क्या है, तंतु संयोग वस्त्र है, समझे कि नहीं? तंतु परस्पर संयुक्त होंगे तो वस्त्र तैयार होगा। तो ये वस्त्र का उपादान कारण क्या है? नहीं, तंतु संयोग, कपास भी नहीं, तंतु भी नहीं, तंतु संयोग, हाँ? परस्पर तंतु एक आपस में संयुक्त तो होते जाएंगे तब जाकर कपड़ा बनेगा। तंतु उपादान कारण नहीं, यदि तंतु उपादान कारण होता तो घर में जो धागा है वहीं कपड़ा बन जाता है। लेकिन धागा तो है, लेकिन धागा का परस्पर संयोग नहीं हो रहा है, हैं? वैष्णव और शैव नहीं हुए धागा, मैं हमेशा बताया करता हूं ना। तो कुछ सांप्रदायिक में सांप्रदायिक चिन्ह होता है ना, तिलक है, आप लोगों ने देखा है ना, कुछ रामानुजी हैं बड़े तिलक ऊर्ध पूर्ण लगाते हैं, ऊर्ध और यहां से लेकर, और निम्बार की तो यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं निम्बार की, करते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं? निम्बार के लोग तिलक कहां से शुरू करते हैं, यहां से, हाँ, नासिका से, और रामानुजी लोग यहां से त्रिशूल बनाते हैं, और सन्यासी लोग ऐसा, देखा है ना, ऊर्ध्वपुंड तिरछापुंड, तो ऐसा लगाया होगा तो क्या पता चलेगा, ये जरूर शैवपंथी है, ऐसा लगा होगा तो क्या वो निश्चय होगा, ये कोई राम भक्त या विष्णु भक्त है, वैष्णव है, नहीं? अब वैष्णव शैव, शैव वैष्णव की झगड़ा चलती है, हम तो वैष्णव हैं भाई, हम तो शैव हैं, तो हम कभी कभी मजाक में कहा करते हैं, ये झगड़ा मत करो भाई, तुम जो, हम जो है ना, दिन भर तो शैव होते हैं, रात को वैष्णव होते हैं, पता है कि नहीं? कैसे ऐसे सोएंगे तो क्या होगा, बोलो, हमारे तिलक कैसे हो जाएगा ऐसे सोएंगे तो? वैष्णव का तिलक होगा कि नहीं, खड़े होंगे कि नहीं? करवट से ऐसे सोएंगे तो हम वैष्णव होंगे कि नहीं रात को? ना? दिन में हम शैव हैं, रात को हम वैष्णव हैं। आप विचार करो, वैष्णव लोग रात को सोएंगे तो क्या होंगे? शैव होंगे नहीं। रात को सोएंगे तो उनका तिरछा होगा कि नहीं? तिलक दिन में खड़ा होगा, रात में सोएंगे तो तिरछा हो जाएगा, और हमारा दिन भर तिरछा रहेगा, रात को सोते ही खड़ा हो जाएगा। तो कौन वैष्णव कौन शैव, ये तिलक को खड़ा और तिरछे को लेकर क्यों विवाद करते हो? अरे भाई, खड़ा और तिरछे के बिना तो तुम नंगे हो जाओगे। तुम्हारे जो कपड़े पहन रखे हो वो क्या है? तंतु संयोग है। तंतु संयोग कैसे हुआ है? एक धागा खड़ा है, दूसरा धागा तिरछा है, दूसरा खड़ा है, फिर तिरछा है, फिर खड़ा है। धागों के खड़े और तिरछे के अलावा और कुछ है इसमें? है बोलो, ये कपड़े में कुछ धागे तिरछे और कुछ धागे खड़े। खड़े और तिरछे सभी धागे को एक ही तरफ यदि रखा जाए तो कपड़ा बनेगा? है खड़ा जितने हैं उतने तिरछा भी होना पड़ेगा कि नहीं? आधा वैष्णव आधा शैव, ले जी, ये कपड़ा वैष्णव है कि शैव है? ये कपड़ा शैव है कि वैष्णव है? बोलो, दोनों है और क्या। अब शैव है करके इसका त्याग करना वैष्णवों के द्वारा होगा, और वैष्णव है करके इसका त्याग करना शैवों से होगा? जैसे शैव और वैष्णव मिलकर एक कपड़ा बना तो दोनों को दो कपड़ा स्वीकार करना है, तो शैव को भी वैष्णव स्वीकार करना है, वैष्णव को भी शैव स्वीकार करना है। हा? ये तिलक खड़े और तिरछे की तिलक की झगड़ा क्यों करते हो? ये खड़े और तिरछे की झगड़े में मत पड़ो। तो तंतु हो वा तंतु संयोग हो वा, कपड़े के प्रति कारण क्या है? तंतु है कि तंतु संयोग है? एक ने कहा मृत पिंड ध्वंस ही घट कार्य की उत्पत्ति के कारण है, दूसरे ने कहा तंतु संयोग ही पट उत्पत्ति में कारण है। ये कहता है कि वियोग कारण है, दूसरा कहता है संयोग कारण है। ले जी, ये सब क्या है बेचारा? ये सब बुद्धि का विलास। शंकराचार्य क्या प्रहार कर रहे हैं इन लोगों के, खुद भी इससे अलग नहीं है वो। घटो वा मृत्पिंडो प्यणुरपि च धूमोऽग्निरचल, पटो वा तंतुर्वा परिहरति किं घोर समनम्, वृथा कंठ क्षोभम। अरे तंतु संयोग को कारण मानने वाले, घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम कहने वाले, क्या तुम्हारा ये तर्क वितर्क वूहा पोह जिस समय में घोरम वो यमराज उपस्थित होगा तो उस समय क्या तुम्हारा तंतु और तंतु संयोग ये निश्चय क्या यमराज से बचा पाएगा? बोलो, बचा पाएगा? जिस समय मृत्यु सामने आएगा, वह घड़े का उपादान कारण मिट्टी या मिट्टी का पिंड या पिंड ध्वंस, ये बुद्धि क्या उस समय यमराज से तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? शंकराचार्य जी कह रहे परिहरति किम घोर समनम, घोरम माने संसार, घोर माने मृत्यु, क्या उससे तुमको बचा पाएंगे ये सब? जब ये तर्क वितर्क वहा पोह तुम्हें मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, तो वृथा कंठ क्षोभम, तो फिर बिना मतलब का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर शास्त्रार्थ करके समय व्यतीत समय बर्बाद क्यों करते हो? हैं बोलो हैं? तो हमने पहले भी कहा है, पढ़ते थे ना हम लोग, तो कोई कहे पढ़ना चाहिए, हाँ बहुत मेहनत करके पढ़ा करो कहता है ना, तो हम कहते पठितव्यम तो मर्तव्यम, न पठितव्यम तो मर्तव्यम, फिर रटा रटम किम कर्तव्यम। पढ़ो तो भी मरना है, न पढ़ो तो भी मरना है, फिर ये आई उन रे लिक, आई उन रे लिक, अभी क्या करना है, ये सब करके क्या करना है, हैं? देख लो। तो इसी तरह शंकराचार्य ने एक जगह भी कहा है ना, नहीं नहीं रक्षते डुकरे कारण है भज गोविंदम, ये उसी से संबंधित है। ये वृथा कंठ क्षोभम वहसी तरसा तर्क वचसा, बिना मतलब तर्क कुतर्क वितर्क करके वह पुह करके, एक तो अपने प्रत्यक्ष कंठ को भी तुम दुखा लो सुखा लो, कंठ सुखा सुखा कर तुम ये सिद्ध करने, अपना सिद्धांत सिद्ध करने की कोशिश करोगे, तो तुम जो सिद्धांत सिद्ध करोगे और शास्त्रार्थ में तुम विजय होगे, तो वह विजय मृत्यु पर विजय कर पाएगा कि नहीं है? बोलो, शास्त्रार्थ में तुम्हें जो विजय मिलेगा वो विजय क्या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराएगा? तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो किसी ने पूछा कि फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने का उपाय क्या है, मृत्यु पर विजय पाने के उपाय क्या है महाराज? शंकराचार्य जी ने कहा, पदाम्भोजम शंभो, एक उपाय है भाई, क्योंकि उसका नाम है मृत्युंजय। शिव का नाम शास्त्रार्थ विजय नहीं है, शिव का नाम क्या है? मृत्युंजय। घटोवा तंतुर्वा इत्यादि शास्त्रार्थ करके शास्त्रार्थ विजय किया शिव ने, ऐसा कहीं नहीं है। तो भगवान शिव के पादाम्भोज